सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यार ज्ञानशक्ति कोटि सूर्यरन्नु मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियु लोक हितव माडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಷ್ಠಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜಯ संसारी जीव चार गतियों में जब भ्रमण करते करते मनुष्य गति में आता है तो उसे औदारिक शरीर की प्राप्ति होती है। भ्रमण करते करते जब तिरंच गति में आता है उस समय भी औदारिक शरीर की प्राप्ति होती है। निगोध शरीर से लेकर संगी पंचेंद्री तक के सब शरीरों में रहने वाला जीव औदारिक शरीरी कहलाता है, किंतु उसे सौनन नाम कर्म का उदय नहीं रहता, जिनको हम स्थावर जीव बोलते हैं, उनको सहनन नाम कर्म का उदय नहीं, संस्थान नाम कर्म का उदय अवश्य होता है, जो कि शरीर का आकार प्रकार यह जीव का संस्थान कहलाता है। यह उसे भले ही हो, किंतु सौनहन नाम कर्म का उदय स्थावर जीवों को नहीं होता। जिनको सौनहन नाम कर्म का उदय होता है वे जीव कहलाते हैं त्रस, और त्रस में भी द्वीन्द्री तीनिंद्री चतुरिंद्री पंचेंद्रियों में सौध्नि और असौध्नि, और मनुष्य गति में मनुष्य जीव, ये सभी सौनन नाम कर्म के उदय वाले जीव कहलाते हैं। यह सौनन हड्डी से संबंधित रखता है, हड्डियों के जुड़ाव, जिस हड्डी के जुड़ाव होते हैं ना परस्पर में, जॉइंट, जॉइंट में जैसे कमर के जॉइंट या हाथ के जॉइंट, ये सभी उसके आधार से सौनन में पांच छह प्रकार के भेद बनते। ये जॉइंट छह प्रकार का हो सकता है, और इसलिए हड्डी से संबंधित यह विषय होने से त्रस जीव ही इस सौनन से संबंध रखने वाले जीव कहलाते। तो कल के दिन इसी सहननधारी जीवों की बात चल रही थी, और उसमें भी सौध्नि असौध्नि जीव की केवल यहाँ बात है, चतुरिंद्री जीव को छोड़ो, क्योंकि वो स्वर्ग भी नहीं जाते और नरक भी नहीं जाते। तीनिंद्री जीव द्वेइंद्री जीव ये सभी स्वर्ग और नरक गति को प्राप्त नहीं होते, इसलिए उनकी यहाँ चर्चा नहीं है। स्वर्ग और नरक में जाने वाले जीव दो ही प्रकार के होते हैं, सौध्नि पंचेंद्री और असौध्नि पंचेंद्री तिर्यंच गति के जीव और मनुष्य प्राणी, मनुष्य जीव, ये कहाँ जाते हैं, दो गतियों में जा सकते हैं, दो ही गति में जाते हैं ऐसा नहीं बता रहे हैं, देवगति में और नरक गति में जाना हो तो यही जीव जाते हैं, अन्य कोई भी जीव जाते नहीं। देव मरण कर, जबकि वो संगी पंचेंद्री है, देव मरण कर देवगति में जन्म नहीं लेता। नारकी जीव मरण कर नरक में जन्म नहीं लेता। नारकी जीव मरण कर देवगति में जन्म नहीं लेता। देव भी मरण कर नरक गति में जन्म नहीं लेता। इस प्रकार से देव और नारकी जीवों की व्यवस्था तो अलग है, किंतु सौध्नी पंचेंद्री असौध्नी पंचेंद्री ऐसे दो प्रकार के जो जीव त्रयंश गति में हैं, ये चारों गति में जा सकते हैं। चारों गति में जाने के जीव कौन कौन से हैं जरा पता लगा लेना। त्रयंश गति के सौध्नी पंचेंद्री और असौध्नी पंचेंद्री, ये दो प्रकार के जीव पंचेंद्री ही हैं। ये एक मन सहित है और एक मन रहित है। और मनुष्य गति में औदारिक शरीरधारी जीव ही दो गति में जाते हैं, देवगति और नरक गति। और कौन जाता है? दो ही गति से जाएंगे। अब मनुष्य एक है, ये मनुष्य भी देवगति में नरक गति में जा सकते हैं, लेकिन दो प्रकार के मनुष्य इसमें समझना चाहिए। सम्मूर्छन मनुष्य और पर्याप्तक मनुष्य। सौध्नी पंचेंद्री पर्याप्तक गर्भज मनुष्य। गर्भज मनुष्य तो चारों गति में जा सकते हैं, किंतु सम्मूर्छन मनुष्य चारों गति में नहीं जा सकते। सम्मूर्छन मनुष्य मरण करके देवगति में और नरक गति में नहीं जाएंगे, ये ध्यान में रखना है कि सम्मूर्छन मनुष्यों को दो गति है ही नहीं, देवगति और नरक गति। सम्मूर्छन मनुष्य मरण करके दो ही गति में जाते हैं, त्रयंश गति में और मनुष्य गति में। मनुष्य गति में जा सकते हैं, हाँ गर्भज मनुष्य भी बन सकते हैं, और सम्मूर्छन मनुष्य भी पुनः मरण कर वहीं वहीं का वहीं उसी पर्याय में जन्म ले सकते हैं। अब ये बात सामने आई कि चारों गति में जन्म लेने वाले जीव औदारिक शरीरधारी ही होते हैं, और उसमें भी पंचेंद्री ही होते हैं। पंचेंद्री में सौध्नी भी हो सकते हैं और असौध्नी भी। अब सहनन की बात हम इसके माध्यम से करेंगे। सौनन छह प्रकार का होता है। मनुष्य किस सहनन वाला किस स्वर्ग तक और किस नरक तक जा सकता है, गुणस्थान सामान्य की अपेक्षा से यह कथन हुआ था। गुणस्थान सामान्य, पहले सहनन वाले मनुष्य कहाँ तक जा सकते हैं स्वर्ग में? सर्वार्थ सिद्धि और भवनत्रिक से लेकर, जब बताते हैं तो भवन गुणस्थान सामान्य से जब घटित करेंगे तो भवनत्रिक से लेकर के लेना, और गुणस्थान विशेष में जब हम चर्चा करेंगे तब भवनत्रिक छूट सकता है। जब हम सम्यक दृष्टि जीव को लेंगे तो भवनत्रिक में तो जाएगा नहीं, वो प्रथम सहननधारी सम्यक दृष्टि मनुष्य स्वर्ग में कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ पर भवनत्रिक तो नहीं आएगा। उसको छोड़ करके वैमानिक देवों में ही नियम से जन्म लेता है, ये कहना पड़ेगा। सामान्य से अपन चर्चा करें, सामान्य से मनुष्य कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? भवनत्रिक से सर्वार्थ सिद्धि तक भी जा सकता है और मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है प्रथम सहननधारी। मोक्ष जो होता है, सर्वार्थ सिद्धि और मोक्ष, ये दोनों जो होते हैं प्रथम सहननधारी मनुष्य को ही होते हैं, ठीक है ना? सर्वार्थ सिद्धि जाने के लिए भी प्रथम सहनन चाहिए और मोक्ष जाने के लिए भी प्रथम सहनन चाहिए। दूसरे आदि सहनन से सर्वार्थ सिद्धि नहीं जा सकती, ये नियम है। इतना समझ में आया? अब दूसरे सहनन का मनुष्य कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? सामान्य से वो बताना है, विशेष कुछ भी नहीं। जब हम गुणस्थान में घटित करेंगे बाद में, भवनत्रिक से नवग्रविक तक। नवग्रविक तक क्यों हुआ? क्योंकि इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। पंच अनुत्तरों में जाने का इसमें शक्ति नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, संवहन शक्ति। अब तीसरे सहनन वाला कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? हाँ, भवनत्रिक से नवग्रवेक तक जा सकता है। बस एक एक स्टेप नीचे उतारना है। पहले सहनन वाला सर्वार्थ सिद्धि तक, ठीक है ना? मिला के नहीं चार्ट इसमें नहीं है, नहीं है उसमें, नहीं जुड़ा होगा। हाँ, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है, ले लो, एक्स्ट्रा है। दूसरे सौनन का मनुष्य नवग्रवेक नव अनुदिश तक, तीसरे सौनन का मनुष्य नवग्रवेक तक, सबको भवनत्रिक से ही लगा लेना है सामान्य कथन होने से। चौथे सहनन वाला मनुष्य सोलहवें स्वर्ग तक, इसका मतलब हम पंचम काल के हैं, आज सहनन चौथा पांचवा छठा। हम यदि चौथे सहनन वाले हों तो स्वर्ग में कहाँ तक जा सकते हैं? सोलहवें स्वर्ग तक जा सकते हैं। यदि पांचवा सहनन हो तो बारहवें स्वर्ग तक जा सकते हैं। यदि हमारा छठा सहनन हो तो आठवें स्वर्ग तक जा सकते हैं। कहाँ से लेकर भवनत्रिक में कब जाएंगे हम? नहीं, भवनत्रिक में क्यों जाते हैं हम? हाँ, मिथ्यात्व के कारण से। सम्यक दर्शन व्रत का पालन नहीं किया, मिथ्यात्व को पालन किया, पालन करना पड़ता है उसका भी, बहुत व्यवहार में जोर से आया हुआ रहता है ना। मिथ्यात्व के उदय के कारण से जीव भवनत्रिक में जाता है। भवनत्रिक में ही जाता है ऐसा भी नियम नहीं है, पर भवनत्रिक में जाएगा तो मिथ्यात्व के उदय से ही जाएगा। भवनत्रिक में जाएगा तो सरागी उपासक बनाने से ही जाएगा। सरागी देवशास्त्र गुरु, राग सहित वाले, परिग्रह वाले तो ही जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। एक पक्ष में रहना पड़ता है ना, वैमानिक देव बनना हो तो एक ही पक्ष ग्रहण करना पड़ता है, दोनों पक्ष भी नहीं चलता। दोनों पक्ष रहेगा तो दोनों तरफ जा सकते, एक पक्ष रहेगा तो एक ही पक्ष में जाएंगे, यानी वैमानिक देव ही बनेंगे। मिश्र प्रकृति के उदय से तीसरा गुणस्थान होता है ना, वो जीव अंतर्मुहूर्त के लिए उस गुणस्थान में रहता है, लेकिन वहाँ पर इतना डेंजर नहीं, क्योंकि वहाँ पर न तो कोई आयु का बंध होना है, न मरण होना है, न जन्म होना है। वो गुणस्थान तो केवल अंतर्मुहूर्त तक रहकर या तो ऊपर जाना या तो नीचे आना, इस प्रकार का वह गुणस्थान है। वो हमेशा जीवन भर नहीं रहता, कभी भी दोनों पक्ष में रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन भर रहता है, दोनों पक्ष में रहना इसमें भी संभव है, मिथ्यात्व गुणस्थान में, और सम्यक्त्व के गुणस्थान में तो एक पक्ष वाला होता है। मिथ्यात्व गुणस्थान को धारण करने वाला जीव यद्यपि मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व गुणस्थान में रहता है, किंतु दोनों की मान्यता रहता है तो दोनों को ही मानता है। हाँ, एक मुखी उसमें भी, एक पक्ष ही, दोनों को मानना भी एक पक्ष है। यानी वो भी समान ये भी समान, एक पक्ष बना करके वह मान्यता कर लेता है। इसलिए निरंतर वह मान्यता के रूप में तो दोनों की मान्यता रखता हुआ पहले गुण स्थान में हमेशा रह सकता है, किंतु भावों की अपेक्षा से मिश्र प्रकृति के उदय से जो परिणाम भाव होते हैं वो केवल अंतर्मूर्त ही होते हैं। वो इस प्रकार के भाव इधर सम्यक्तों के भी नहीं और इधर एकांत से मिथ्यात्व के भी नहीं, इस प्रकार के मिश्रित भाव जिसको बोलते हैं उनका काल ही अंतर्मुहूर्त काल है, उतने ही समय तक वो रहेगा। इसके उपरांत या तो नीचे आएगा या तो ऊपर जाएगा। नीचे आएगा तो कैसे परिणाम रहेंगे, नीचे आएगा तो दोनों की मान्यता तो रहेगी लेकिन मिश्र परिणाम नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मिथ्यात्व का उदय है, मिथ्यात्व के ही परिणाम रहेंगे, किंतु वहाँ मिश्र प्रकृति का उदय होने से मिश्र भाव ही रहेंगे। इस प्रकार कर्म जनित, कर्म उदय जनित जो परिणाम होते हैं वो एकमुखी ही तो होंगे, मिश्र है तो मिश्र ही होंगे, और मिथ्यात्व रूप हों मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व रूप ही होंगे। अब मान्यता में भले ही आप दोनों के मान्यता बना रहे हैं पहले गुण स्थान में, परंतु मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण से एकमुखी परिणाम रहेंगे, मिथ्यात्व के ही परिणाम रहेंगे। तो कैसे रहेंगे देखना, एक उदाहरण देते हैं। पहले गुण स्थान में रहने वाला जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु को भी मान रहा है, नहीं मान रहा ऐसा नहीं, मान रहा है, और सरागी देव शास्त्र गुरु को भी मान रहा है, दोनों को मान रहा है, तो यहां मिश्र नहीं कह सकते। क्यों? मिथ्यात्व का उदय है, उदय तो मिथ्यात्व का है, तो मिथ्यात्व के उदय में मिश्र परिणाम होंगे? नहीं, मिथ्यात्व के ही परिणाम होंगे। तो वह सच्चे देव शास्त्र गुरु को मान रहा है, इधर भी रुचि रख रहा है, तो इसको मिश्र क्यों नहीं कहते, प्रश्न उठता है। इसको मिश्र क्यों नहीं कहते, प्रश्न उठता है। इस प्रश्न का उत्तर ये दिया जाता है कि वह सच्चे देव शास्त्र गुरु को अवश्य मान रहा है, लेकिन उनको मानते हुए भी मिथ्यात्व का ही पोषण कर रहा है, यानी स्वार्थवश मान रहा है। कई लोग मानते हैं ना, कहीं भी क्षेत्र पर जाते हैं, होमचा जाते हैं, या तो श्रवण बेगोल जाते हैं, या तो महावीर जी जाते हैं, या तो कहीं भी समय शिखर भी जा रहे हों, किसी भी स्थान पर जा करके उनसे पूछो आप क्यों जाते हो, तो मनोकामना कुछ थी और उसकी पूर्ति हो इसलिए हम जाते हैं, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के उपासक कहलाएंगे कि नहीं? नहीं कहलाएंगे, तो यही है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के उपासक है, वो दोनों को मान रहा है, वो बात अलग है, परंतु जब ये कर रहा है, जब समय शिखर जा रहा है, शुद्धों की वंदना करने जा रहा है, तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने जा रहा है, तो फिर क्या वो सम्यक दृष्टि है? नहीं, कामना को लेकर के जा रहा है, और यह कामना किस कर्म के उदय से होती है? नहीं, अनंतानुबंधी के उदय से, अनंतानुबंधी के माध्यम, क्योंकि कामना लोभ रूप है ना, अनंतानुबंधी के उदय से तो कामना होती है, और मिथ्यात्व के उदय से तो अंधश्रद्धा होती है। अब इसमें दोनों घटित होते हैं। अंधश्रद्धा क्या है? सच्चे देव शास्त्र गुरु मुझे भौतिक सुख नहीं देते, मैं जिस कामना की पूर्ति के लिए जा रहा हूँ वो नहीं देते, ऐसा मालूम नहीं है, अंधश्रद्धा है, और अंधश्रद्धा होने से ही जा रहा है। नहीं, वो कोई चोर नहीं है, जानबूझकर नहीं कर रहा है, वो जानबूझकर नहीं, अज्ञान के कारण से कर रहा है। जो जानबूझकर करता है वो बगल में छुरी और मुंह में राम राम उनको कह सकते हैं, जानबूझकर के वो नहीं करता। ज्ञान न होने से, अंधश्रद्धा होने से उसी को हित का सुख का साधन समझता है, इस प्रकार करूंगा तो मुझे भौतिक लाभ होगा, इस प्रकार अंधश्रद्धा बैठी हुई है, और वह अंधश्रद्धा निकलती नहीं आसानी से, क्योंकि द्रव्य कर्म का ऐसा उदय है, उसका ऐसा अनुभाग है, उसकी ऐसी शक्ति है, उसका ऐसा स्थिति बंध है। वो स्थिति बंध का काल, अनुभाग, शक्ति जब तक जीव को सताता रहता है उदय में आकर, उसके परिणामों में ज्ञान के परिणाम जगते ही नहीं। अंधश्रद्धा के अभाव से ज्ञान जगेगा, वो तो है ही नहीं यहाँ। अब ये समझो कि उसको तत्वों का ज्ञान तो हो गया, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप भी पता चल गया और सरागी देव शास्त्र गुरु का स्वरूप भी पता चल गया। पता चलने के बाद यदि फिर भी करता है तब आप कह सकते हैं उसको बगल में छुरी, मायाचार हो गया, वो मायाचार रूप परिणाम हो गए। तो मायाचार रूप परिणाम होने से तिरंच गति में भी जा सकता है। देवशास्त्र गुरु का उपासक है, समय से कर जा रहा है, तिरंच आयु का बंद कर सकता है, तिरंच गति का बंद कर सकता है, क्योंकि सच को जानते हुए भी उसको नहीं कर रहा है और मायाचारी कर रहा है तो तिरंच गति का बंद हो सकता है, क्योंकि माया तैरोग्यो नश्य तत्वार सूत्र में आया है ना। माया मायाचारी के परिणाम तिरंच आयु के बंद में कारण पड़ते हैं। तो पहले गुणस्थान वाला जीव मिथ्यात्व का उदय वाला अंधश्रद्धालु भी हो सकता है और परिचित भी हो सकता है तत्व से। परिचित होकर के भी करना नहीं चाहता है तो उसको जानबूझकर कह सकते हैं गलत कर रहा है जानबूझकर। हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव विदेह क्षेत्र में भी जा सकता है। नहीं, फर्क इतना फर्क कुछ नहीं। ये समझो, सिद्धांत ये है कि मिथ्या दृष्टि जीव विदेह क्षेत्र में जा रहा है तो कर्म भूमि में जा रहा है। कर्म भूमि में जन्म लेने वाला जीव नियम से मिथ्यात्व के द्वारा ही जाएगा। मनुष्य कर्म भूमि से कर्म भूमि में जा रहा है, ये भी कर्म भूमि है क्या? नहीं, कर्म भूमि से कर्म भूमि में जा रहा है तो मिथ्यात्व के उदय में ही जाएगा। ये नियम है, सम्यक दर्शन के साथ कभी नहीं जा सकता। ये सिद्धांत है, ये नियम है। ये सिद्धांत के नियम को ख्याल में रखना है पहले। और भवनत्रिक में भी जाता है कर्म भूमि से कोई भी तिर्यंच या मनुष्य, ये दो गति का जीव। कर्म भूमि से यदि भवनत्रिक में जा रहा है तो मिथ्यात्व के उदय के साथ ही जाएगा, प्रथम गुणस्थान के साथ जाएगा या तो द्वितीय गुणस्थान के साथ। भवनत्रिक में जाएगा। यानी मिथ्यात्व के उदय में ऐसा भी नियम नहीं बनाना कि मिथ्यात्व के उदय से जीव भवनत्रिक में ही जाता है, एकांत नहीं, एकांत नहीं। वो वैमानिक देवों में भी जा सकता है। जैसे प्रथम गुणस्थान में मिथ्यात्व के उदय के साथ बाल बाल मरण करने वाले द्रव्यलिंगी मुनि महाराज कहाँ जा रहे हैं? नव ग्रवेक तक जा रहे हैं। तो वैमानिक देव नहीं बन रहे क्या? बन रहे हैं, ऐसा एकांत नहीं। वैमानिक देव भी बन सकते हैं, भवनत्रिक में भी जा सकते हैं, परंतु ये नियम है कि भवनत्रिक में जाने वाला जीव नियम से मिथ्या दृष्टि रहेगा। ये नियम ध्यान रखो। भवनत्रिक में जो जो जीव जाएगा कर्म भूमि से तिरंच गति से, तिरंच कर्म भूमि के तिरंच और कर्म भूमि का मनुष्य, ये दोनों जीव भवनत्रिक में जब भी जाएंगे मिथ्यात्व के साथ में ही जाएंगे, ऐसा नियम है। परंतु ये कर्म भूमि के मिथ्या दृष्टि जीव क्या वैमानिक देव नहीं बन सकते? बन सकते, बन भी सकते, नहीं भी बन सकते। ये नियम क्या क्या हैं इनको ध्यान में रखना है। नियम ध्यान में रह गए तो फिर शंका नहीं होती कहीं भी। नियम क्या क्या बनाया है, बनाया नहीं गया, क्या क्या है, किसी ने नहीं बनाया इसको। ये अनादिकाल से नियम है जीव के साथ, जीव के परिणामों के साथ, औदयिक भाव के कारण ये नियम बने हुए हैं। स्वयं के नियम है ये। मिथ्यात्व के उदय में औदयिक भाव है हमारे पास, और हमारे पास उस भाव के साथ जो भी नियम लागू हो रहे हैं उस नियम के अनुसार हम स्वयं जा रहे हैं। ऐसे किसी भगवान ने कहा इसलिए नहीं जा रहे। भगवान ने इस जिन शासन का उपदेश दिया तो इसमें जो संविधान लिखे हुए हैं उनके लिखे हुए हैं, इसलिए उनके अनुसार हम नहीं जा रहे हैं। उन्होंने तो प्रकृति के अंदर रहने वाले सारे सिद्धांतों को उघाड़ करके रख दिया है, प्रकट करके रख दिया है। हम कैसे कैसे जाते हैं हमको समझाया। उन्होंने नियम नहीं बनाया, उन्होंने सिद्धांत नहीं बनाया, उन्होंने बनाए इसलिए हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं किसी देश को चलाने के लिए संविधान बनाया जाता है और जो बनाता है उसके अनुसार हम चलाते हैं, हम ही बनाते हैं, हम ही चलाते हैं, ऐसा नहीं है। ये हम जो अपने परिणामों के द्वारा कर्मों को बांधते हैं और उन कर्मों के उदय से जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं, और हम जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे भगवान उपदेश दे रहे हैं, ये वहाँ गया, अब ये वहाँ गया। इस प्रकार सिद्धांत तो जो ध्यान में आते हैं केवल ज्ञान में ही आते हैं, ज्ञान में आते हैं। इसलिए ये धर्म जैन धर्म कोई किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादित धर्म नहीं है, यानी संस्थापित धर्म नहीं है, रचित धर्म नहीं है, खड़ा किया हुआ धर्म नहीं है। वस्तु स्थिति है, जगत में जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों के परिणमन के बारे में केवल ज्ञान से जानकर उसका उपदेश दिया है। ये है जैन धर्म, ये जैन धर्म। इसको जानने से और समझने से आप संसार से मुक्त होते हैं, आप अपने सिद्धांतों को जानते हैं। ये केवल ज्ञानी के वाणी को जानने से, हमने केवल ज्ञानी को वाणी को केवल ज्ञानी के वाणी को जाना ऐसा नहीं, हमने अपने सिद्धांतों को जाना। हम अनादिकाल से क्या थे हमने अपने को जाना, और वो केवल ज्ञानी ने जो उपदेश दिया है वो हमारा ही दिया है। हमने क्या क्या किया, हमारे पास कितने कर्म थे, हमको देखा और हमको ही उपदेश दिया। जैसे दर्पण, सामने जाकर के खड़े हो गए, दर्पण आपका उपदेश देता है, वो तुम्हारा चेहरा ऐसा ही है, तुम्हारा चेहरा ऐसा ही है, तो दर्पण आपके चेहरे का संविधान बना रहा है क्या? नहीं, केवल दिखा रहा है आप क्या हो, ये दिखा रहा है। ऐसे ही केवली भगवान समस्त संसारी प्राणी क्या हैं, कैसे कैसे भ्रमण कर रहे हैं, किस कारण से भ्रमण कर रहे हैं, किन कर्मों के कारण से, किन भावों के कारण से, कैसे राग द्वेष, कैसी लेशाक, ये सब उपदेश संसारी प्राणियों में है, उसी उपदेश को उन्होंने दिया। इसलिए जैन धर्म किसी के द्वारा रचित धर्म नहीं है, ये कृतक धर्म नहीं है, ये निसर्ग से प्रदत्त धर्म है, निसर्ग के सृष्टि के नियमों को बदलाने वाला धर्म है। और ऐसा उपदेश किसने दिया, केवली भगवान को छोड़कर और किसने दिया? किसी के पास ये सामर्थ्य नहीं है कि सारे अनंत पदार्थों को जानो और उसके सिद्धांतों को समझाओ, ये कैपेसिटी किसी भी छद्मस्थ प्राणी के पास नहीं है। केवली ने जो बताया है वही मुनि भी बताते हैं, मुनि भी छद्मस्थ हैं, गंधर्व परमेष्टि भी छद्मस्थ हैं, केवल ज्ञानी नहीं, उन्हीं का लेकर के उनको समझाना पड़ता। जैसा केवली ने बताया वैसा ही मैं समझा रहा हूँ, और ये समझाने वाला तत्व आप में है, और आप इसको समझो और पार पड़ो संसार से। जो अंदर दोष हैं उन दोषों से मुक्त होकर के बाहर आओ, कल्याण करो। कैसा है जैन धर्म का सिद्धांत, बड़ा पवित्र है, प्रत्येक संसारी प्राणी को मोक्ष दिलाने वाला, सुख देना दिलाने वाला धर्म है ये। इसको समझे बिना भटक रहे थे आज तक, आज समझ में आ रहा है कि ऐसा है। आंखें खुल जाती है, भीतर की चक्षु, अंतरंग चक्षु खुलती है, और अन्य कहीं भी पढ़ लो किसी भी ग्रंथ को दुनिया की, अंदर की चक्षु नहीं खुल सकती, बाहर की चक्षु भी यूं यूं होती है, बंद भी होती है, शुरू भी होती है, ये क्या है? संशय पैदा होता है, क्योंकि वहाँ सारी समस्याओं का, सारी शंकाओं का निवारण नहीं है। तो बाहर की आंखें भी ऐसी ऐसी करती, यहाँ ऐसा नहीं, बाहर की आंखें भी ऐसी, हाँ ऐसा है क्या? आंखें ही बंद नहीं होती है, बाहर भी खुल जाते हैं और अंतरंग आंखें भी खुल जाती है, अवाक रह जाता है यहाँ से अपने तत्वों को समझ करके। मेरा आत्म तत्व ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, आज तक किसी ने बताया क्यों नहीं मुझे, मैं अभी तक मोक्ष में होता महाराज। ऐसे 10 साल पहले आते तो हम 10 साल पहले प्रतिमाधारी बनते, आप आए क्यों नहीं? आंखें खुल जाती है जैन तत्वों को पढ़ने से, क्योंकि असली तत्व तो यही है। अनंत संसारी प्राणियों को, चाहे मनुष्य, तिर्यंच, देव, नार की कोई भी हो, वो यहीं आना पड़ेगा, इसी की शरण लेना पड़ेगा, इसी को समझना पड़ेगा। समझ करके मोक्ष जाना हो तो इन्हीं तत्वों से जाना पड़ेगा, एक ही द्वार है। दुनिया के सारी शंकाओं का, सारी समस्याओं का, सारी जिज्ञासाओं का समाधान एकमात्र केवली प्रणीत तत्वों में है। केवल ज्ञानी, बड़े महान विज्ञानी, आंतरिक विज्ञान है ये, आंतरिक जगत का विज्ञान है यह, अनंत विज्ञान है। बाहर का विज्ञान भौतिक है, किंतु अंदर के विज्ञान को किसने खोजा, किसने पाया, किसने बताया? केवल 24 ही हो गए वो, अजितनाथ से लेकर महावीर तक। महावीर भी अजितनाथ नहीं, आदिनाथ से लेकर महावीर तक। महावीर भी आदिनाथ भगवान के काल में थे क्या? नहीं, क्या नाम था? मरीची। वो मरीची मरीज था उस टाइम, रोगी था, आत्मा में बड़ा रोग उत्पन्न हो गया था, कैंसर ही हो गया था। किस कषाय के उदय के कारण? मान कषाय के उदय के कारण कैंसर हो गया, कल्याण नहीं हुआ। आदिनाथ भगवान को छोड़ा, ऐसे तीर्थंकर को, अपने दादाजी को छोड़ा, अजोबा को छोड़ करके, क्यों? मान कषाय के उदय में वो कैंसर है, और ऐसा कैंसर ठीक नहीं हो सकता था। ऐसा मान कषाय का उदय जो ठीक नहीं हो सकता, वही तो कैंसर है। ऐसा कैंसर हो गया और तीर्थंकर को छोड़ दिया, और अन्य अन्य विचार करते हुए अपने छद्मस्त विचारों से जो समझ में आया धर्म, मिथ्या धर्म को करता रहा, स्वीकार किया। रागी देवों को भजता रहा, रागी देवों को भजने का ही उपदेश देता रहा। मरीच ने ऐसा काम किया, और वही मरीच अंत में आकर के महावीर बन गए। और महावीर बनने के बाद वो कहते हैं कि मैं कैंसर से पीड़ित था, उस पीड़ा के कारण से ही मैं यहाँ तक भटकते भटकते ये कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक मुझे संसार में भटकना पड़ा, रहना पड़ा। नहीं तो उसी समय में अजूबा के सामने मुझे केवल ज्ञान होकर मोक्ष भी मैं जा सकता था, लेकिन मान कषाय को नहीं छोड़ा। ये मान कषाय किसका रोग है? आत्मा का रोग है। कौन सा रोग है? अगर छूटता नहीं है तो कैंसर है, छूटता है तो जुकाम है, छोटा सा रोग। अपने आत्म तत्व को समझकर अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने में सुख है, शांति है। कहाँ भटक रहे हैं? कितने भटक रहे थे हम आज तक? कहाँ कहाँ भटके देखो। कोल्हापुर में जन्म लेने के बाद भी हमको कहने वाले कोई नहीं रहे, ऐसे कहाँ क्लास कहाँ चलते हैं बताओ। इन्हीं इन्हीं तत्वों को समझा कर आत्म कल्याण के मार्ग पर लगाने वाले सदगुरु सत्संग कहाँ है बताओ ना? कहीं भी घूम करके आओ, बहुत कम स्थान मिलेंगे। बाकी सब जगह उपदेश होता है, प्रवचन चलता है, तो बस जनरल नैतिकता की इधर उधर की थोड़ी बातें होती हैं, आप अधिक से अधिक एक शाकाहारी बनते हैं, नैतिक हो जाते हैं, बस सम्यक दर्शन, तत्वज्ञान, आत्मज्ञान कुछ नहीं। अज्ञान अंधकार आत्मा में पड़ा रहता है, बाहर से हम अपने आचरण में थोड़ा बहुत नैतिक शिक्षा पाकर नैतिक बन जाते हैं, एक नागरिक बनते हैं बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सभ्य नागरिक बनते हैं, सुसंस्कृत नागरिक अवस्था हमारे लिए आती, लेकिन धार्मिकता नहीं आती। असली धार्मिकता तो ये है, हम अपने को पहचान गया और अपना पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया, ये असली धार्मिकता है। लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि ऐसा परिवर्तन एकाएक कैसे कोल्हापुर में, सिटी में, इतनी भौतिकता के बीच, चकाचौंध के बीच 32 लोग प्रतिमाधारी, आश्चर्य कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ परिवर्तन कैसे, क्यों क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है ये सत्संग? कारण ये है, सत्संग कारण। सत्संग हम नहीं है, सत्संग कारण, जिनवाणी का सत्संग। हम जिनवाणी पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं उसी को बताते हैं। आप सत्संग में बैठ गए, जिनवाणी की सुन ली और अपने को पहचान गए, इससे ज़्यादा क्या हुआ? हमको ऐसा नहीं लगता कि ये लोग इतने परिवर्तित हो गए तो हमने परिवर्तन किया, ऐसा नहीं लगता। इनका उद्धार हो गया, जिनवाणी के वचनों को सुनने के लिए भाव जगे और इनका जीवन रूपांतरित हो गया। ये मैंने किया, ये भी क्या आंसर है? ये बहुत बड़ा क्या आंसर है। हम स्वस्थ रह करके ही सब काम करते हैं। कैंसर कभी हो ही ना, ऐसा स्वास्थ्य हमने प्राप्त करके कैंसर को हमने कैंसल कर दिया, कभी नहीं हो सके। कोई भी हम काम करे, कितना भी बड़ा काम करे, छोटा काम करे, अच्छा काम करे, उसमें मान कषाय उदय में नहीं आना चाहिए। ये धर्म की पहचान है, ये आत्मधर्म की पहचान है, ये जैन धर्म की पहचान है, इसी को जैन धर्म बोलते हैं। सब कुछ करो लेकिन मैं, ऐसा नहीं। सब कुछ करो लेकिन तुम, ऐसा नहीं। मैं तू तू, ऐसा जहां नहीं होता है वहीं जैन धर्म होता है। कितनी निष्कषाय परिणाम, कषाय को ही दूर करने के लिए धर्म है, और उसी धर्म का नाम जैन धर्म, जीतने का धर्म। मान को जीतो, माया को जीतो, लोभ को जीतो, जीतते जाओ। जीतने वाला जैन, जीत जो चुका है उनका नाम जिन। प्रशंसा सुनना कैंसर नहीं, प्रशंसा सुनकर खुश होना, अंदर अंदर खुशी का अनुभूति करना,
ये भी कैंसर है।
एक
भीतर के कैंसर।
हाँ, कैंसर तो है ही। सब बीमारियों का दवा एक ही, आत्म तत्व चिंतन। बहुत आनंद है इसमें। हम दिन रात चिंतन करते हैं, ऐसा लगता है कि कैसे दिन निकल रहे हैं और कैसा समय व्यतीत हो रहा है। 4 महीने पता नहीं चले, कुछ कर ही नहीं पाए और 4 महीने चले गए। जीव सिद्धांत चर्चा के 2 ही पन्ने हो गए, आगे बढ़ाना है उसको, बढ़ाएंगे। ऐसे भव्य जीव जहाँ हैं वहाँ पुण्य भी होता है उनका, उस पुण्य के कारण से। देखो महावीर का समोच्चरण विपलाचल पर्वत पर कितनी बार आया? 7 बार आया बताते, 7 बार विपलाचल। विपलाचल पर्वत किस प्रांत में है? बिहार में, बिहार में है। विपुलाचल पर्वत बिहार में, और 7 बार वहां आए महावीर भगवान, अन्यत्र क्यों नहीं गए? कुछ तो होगा उस विपुलाचल पर्वत पर विपुल मात्रा में, भव्य जीव तो सुनने वाले होंगे तभी तो आए। अपने आत्मा का कल्याण करने वाले जिज्ञासु बहुत सारे रहे होंगे तभी तो तीर्थंकर वहां पहुंचे, और तीर्थंकर उनको देख करके नहीं पहुंचते, उन भव्य जीवों का पुण्य आकर्षित करता है। जाऊं इस प्रकार की बुद्धिपूर्वक बुद्धि लगा करके नहीं जाते भगवान, जिनका पुण्य आकर्षित करता है। पुण्य एक मैग्नेटिक शक्ति है, वो मैग्नेटिक शक्ति जहां पर ज्यादा होता है ना, तीर्थंकर भगवान वहां खिंच जाते हैं। भगवान तो लोहे के लोह कण के समान है, और आप चुंबक के समान है, भव्य प्राणी चुंबक के समान होते हैं। जहां पर आत्म कल्याण के लिए प्यासे बनकर के खड़े रहते हैं जीव, वहां पर तीर्थंकर भगवान पहुंचते हैं। चूको मत, मनुष्य पर्याय मुश्किल से यह मिली हुई पर्याय है, चूको नहीं, भ्यो न का संयम धारण करा, सरल है, काय कठिन नहीं। 32 हो गए, 27 थी, और डर धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, जैसे 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 निकट आ रहे हैं, स्वरूप समझ रहे हैं, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा है। अभ्यास करने के लिए बाहर और अंदर का मत सोचो, बाहर करेंगे जाएंगे तो क्या होगा, अभ्यास के काल में बाहर कुछ खाना पड़ता है तो खा लो, कोई दिक्कत नहीं, पर घर में तो अभ्यास होगा ना। 1 साल अभ्यास करो, और 1 साल के उपरांत फिर संकल्प लेने की शक्ति को समझो कि ले सकते हैं क्या, नहीं तो अभ्यास में रहो और 1 साल रहो। फिर बाहर जाते हैं तो बाहर का भी हल हो जाएगा एक दिन, वहां जाने से कैसे किया जाए, रास्ता निकलता है, पगडंडी निकलती है, वहां भी पगडंडी होती है लेकिन दूर से दिखती नहीं, निकाला जा सकता है। ऐसा निकाल करके आत्मा के कल्याण के प्रति जो एकदम आसक्त है, वह भव्य प्राणी ही वास्तव में पुण्यात्मा है, वो महान है, आदर्श है। देवलोक भी बैठ करके वंदना उस आत्मा को जो इतने आत्म कल्याण के प्रति आसक्त है, संयम मार्ग में सशक्त है, उनकी वंदना, और बाकी को जय जिनेन्द्र, इनको वंदना, बाकी को जय जिनेन्द्र। और वहां जो मुनि महावृत्ति आदि हैं, आत्म कल्याण में आसक्त हैं, दुनिया में भौतिक चकाचौंध में नहीं अटक रहे हैं, ख्याति पूजा लाभ आदि से मुक्त हैं, अपने आत्म कल्याण के प्रति समर्पित हैं, जिनको आत्म कल्याण को छोड़कर अन्य कोई मतलब नहीं, कोई किसी काम में रुचि नहीं, उनको नमोस्तु। देव लोग ऐसे मुनियों को नमोस्तु करते हैं, ऐसा पद वंदनीय है। बाकी पद तो बाकी पद है, भौतिक है, भौतिक है, भौतिक उनको नमस्कार नहीं करते होंगे क्योंकि भौतिक को भौतिक नमस्कार नहीं हो सकता होगा, नहीं होता है। अनुवृत्ति हो, सम्यक दृष्टि हो, महावृत्ति मुनि हो, ये ख्याति लाभ पूजा आदि से मुक्त ही रहते हैं, परमार्थ में इनकी रुचि दिखाई देती है निरंतर, ये बदलाव है। और इससे बढ़कर के दुनिया में कोई काम नहीं है, ये अंतिम कार्य है आत्मकल्याण का, इसको जिसने कर लिया अब करने का कुछ भी नहीं बचा। आत्मकल्याण का कार्य ही अंतिम कार्य, संसार के कार्यों को अनंत बार किया है, अनंत बार भौतिक सुख पाया है, अनंत बार ग्रैवेक के अहमेंद्र के सुख को भी पाया है, किंतु हमने आत्मा के सुख को जरा भी नहीं पाया, और वो काम अब कर रहे हैं। बहुत अच्छा लक्षण है, अंदर की आंखें खुल गई, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए और खोलेंगे, और स्पष्ट करेंगे। हाँ, टाइम हो गया है, थोड़ा इनको टाइम देना है।